स्वयमरूपकदाम्बेऽहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट वीक जस्ट अ मिनट लास्ट वीक हमने 21 नंबर श्लोक तक डिस्कस किया था और 22वें नंबर से आज स्टार्ट करना है और इसके यहाँ पे आज इस श्लोक से और इसके बाद वाले श्लोक से नारद मुनि अपनी स्टोरी बताना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये श्लोक इस तरह से आता है इदं हि पुंसः तपसः सुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। जस्ट एक मिनट रुकेगा। हरे कृष्णा ओके सॉरी मुझे एक अर्जेंट कॉल आया था, एक सन्यासी आने वाले हैं, वो सन्यासी महाराज का फोन आया था तो इसलिए जो उठाना पड़ा बीच में। इस श्लोक का मीनिंग है विद्वान मंदली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या वेद अध्ययन यज्ञ दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। इसमें आता है कि नारद मुनि इस प्रकार से बता रहे हैं, भगवान के गुणों का वर्णन प्रारंभ करने के पहले नारद मुनि डिस्कस कर रहे हैं कि लोग जितने भी तपस्याएं करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन, इन सभी का वास्तविक लक्ष्य है भगवान की लीलाओं का वर्णन। भगवान की लीलाओं का वर्णन जो व्यक्ति करता है दैट मीन्स वो संसार की सारी तपस्याएं, संसार के सारे लक्ष्य और वेदों का अध्ययन, संसार के सारे यज्ञ, सारे दान कंप्लीट करता है। दैट मीन्स हरे कृष्ण महामंत्र के जो, हरे कृष्ण मूवमेंट के जो भक्त हैं, वो सभी भक्त इस सेंस में ये सारे यज्ञ जहाँ दान तब कर चुके हैं तभी वो भगवत नाम का जप ले रहे हैं या भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। ये नारद मुनि का कंक्लूजन है यहाँ पे कि सारी तपस्या, वेदों का अध्ययन और सब वस्तुओं का प्रयोजन भगवान की लीलाओं का वर्णन में समाप्त होता है। तात्पर्य मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। मनुष्य एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि लोगों को डिस्कस करने के लिए बहुत सारी हजारों चीजें संसार में होती हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः। जो लोग संसार की वस्तुओं में डिस्कस करना चाहते हैं उनके पास हजारों वस्तुएं होती हैं डिस्कस करने के लिए और लोगों की बुद्धि इन सब वस्तुओं में लगी रहती है, इन सभी ज्ञान की उन्नति में लगे रहते हैं और ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मानव समाज की पूर्णता प्राप्त होती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत भगवान विष्णु की प्राप्ति में होता है। इसलिए श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे यह नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं इस तरह से, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। संसार के सभी लोगों का वास्तविक उद्देश्य या वास्तविक लाभ भगवान विष्णु की सेवा करने में है, परंतु ज्यादातर लोग इस चीज को समझते नहीं है कि उनका ये वास्तविक जो उद्देश्य है वो भगवान विष्णु की सेवा है। वो अलग अलग जगह पे सेवा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, अपनी फैमिली की सेवा करते हैं, अपनी कम्युनिटी की सेवा करते हैं, इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार से सेवा करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं रहता है कि भगवान विष्णु की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। और विष्णु की माया जो है, विष्णु की बाहरी शक्ति, बहिरंग शक्ति, माया शक्ति से वो लोग आकर्षित हो जाते हैं, और माया शक्ति से आकर्षित होने के कारण वो इस संसार में नहीं समझ पाते हैं कि भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो आगे इसमें लिख रहे हैं, विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। जब भी हम विष्णु को भूल जाते हैं, भगवान विष्णु को भूल जाते हैं, दैट मीन्स हम भोग की तरफ चले जाते हैं। एक तरह से ऐसा श्लोक भी आता है कि कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तय दय दुख। उस श्लोक में आता है कि जैसे व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है वैसे माया शक्ति में फंस जाता है। तो विष्णु की माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, और जो इसमें फंसे रहते हैं वो, उनके पास भी ज्ञान होता है परंतु ये ज्ञान वो भगवान की सेवा में, भगवान को जानने में नहीं लगाते हैं। जैसे अलग अलग वैज्ञानिक है, नास्तिक वैज्ञानिक जो है, वो लोग अपने ज्ञान का उपयोग किस में लगाते हैं, वो अपने ज्ञान का उपयोग लगाते हैं इसमें ये प्रूफ करने में कि भगवान नहीं है। कुछ लोग हैं वो इसमें उपयोग लगाते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीवन को कैसे उपयोग, जीवन को कैसे लाभदायी बनाया जाए, ज्यादा कंफर्टेबल जीवन जिया जाए, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं। तो उन सभी के अंदर बुद्धि है, परंतु विष्णु माया के चंगुल में फंसे होने के कारण वो अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगा के इंद्रियों के भोग में लगाते हैं। वास्तविकता में संसार की सारी सामग्री, ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की अलग अलग शक्तियों का प्रकट है, अलग अलग शक्तियों का प्राकट्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। नारद मुनि ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे ये मीनिंग है कि अभी तक उन्होंने जो पिछले 10 श्लोकों में बताया लगभग, उसको वो कंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है या कोई ऐसे शास्त्र जिसमें भगवान का गुणगान दिया हुआ है, तो ऐसे शास्त्र अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है दैट मीन्स वो संसार का सबसे ऊंचा कार्य कर रहा है। अगर कोई उसको छोड़ के कुछ और कार्य करता है तो फिर वो व्यक्ति उतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। भागवत में इस प्रकार से आता भी है एक जगह पे कि जो भगवान की भक्ति को छोड़ के और दूसरी चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं वो संसार में मूर्ख कहलाते हैं। ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाते हैं, इसलिए उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है परंतु सभी उनसे भिन्न। जैसे गीता में भगवान बताते हैं 9वें अध्याय में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये संसार मेरे द्वारा व्याप्त है, मेरी अव्यक्त शक्ति के द्वारा व्याप्त है, और मत स्थानी सर्वभूतानी, सभी वस्तुएं मुझ में हैं परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। दैट मीन्स भगवान अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा सभी वस्तुओं में स्थित होते हैं, और पर्सनल रूप में भगवान भगवत धाम में और भक्त के हृदय में भी स्थित होते हैं। तो भगवान से ही ज्ञान आता भी है, भगवान गीता में लिखते हैं कि मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनम् च, मुझसे ही ज्ञान भी आता है। और भगवान के दिए हुए ज्ञान को जब कोई भगवान की सेवा में लगाता है तो फिर वो व्यक्ति अपने जीवन की सफलता प्राप्त करता है। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है। वाल्मीकि एक महान कवि थे, उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे, तो इसी कारण वे अमर हो गए हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। तो इन द सेंस दिस इज द थीम ऑफ द पर्पोट। इस पर्पोट में यही थीम बताया है कि जिस व्यक्ति के पास जो भी टैलेंट है, संसार में जो भी ज्ञान है, संसार में जो भी दर्शन है, विज्ञान है, वो केवल इसीलिए है क्योंकि भगवान से निकला है, तो भगवान के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा अगर उसको उपयोग किया जाता है तो वो वस्तु यूजलेस, समाज के लिए कुछ भला नहीं हो पाता है। वाल्मीकि मुनि एक महान कवि थे, उन्होंने रामायण को लिखा भगवान राम को ग्लोरीफाई करने के लिए, व्यासदेव श्रीमद भागवतम को लिखने के लिए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो भी टैलेंट है, उस प्रकार से उसको अगर वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो उसका वो टैलेंट ग्लोरीफाई हो जाता है और सफल हो जाता है। इसके बाद 23 नंबर श्लोक से नारद मुनि खुद अपनी अपनी अपना लाइफ का, अपने पिछले जीवन का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। उनके पिछले लाइफ में वो कौन थे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राव्वसि निर्विवक्षताम्। वो बता रहे हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने, पिछले कल्प में मैं दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, मैं दासी का पुत्र था परंतु वेदवादी नाम, वेदांतियों के, वेदांत के अनुयायी जो हैं, जो भक्ति शास्त्रों के अनुयायी हैं, उन सब की सेवा में मैं लगा हुआ था। यद्यपि मैं दासी का पुत्र था परंतु मैं उनकी सेवा कर रहा था। और वो लोग निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राव्वसि निर्विवक्षताम्। 4 महीने के लिए जब वो हमारे यहाँ आए थे तब मैंने उनकी सेवा की थी। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा करता था। नारद मुनि इस लाइफ में दासी पुत्र थे। इसके पहले वाली लाइफ में नारद मुनि एक गंधर्व थे, उनका नाम था उपवर्ण। और एक बार वो गंधर्व बहुत अच्छा गाते थे, उनको कुछ घमंड भी था अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने गाने के कौशल के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए थे वो, तो बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को साथ में लेके गए और उनके साथ गान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहां पे भगवान का गान चल रहा था और ये जो गंधर्व थे अपना अपने बारे में बताने लगे, अलग अलग तरीके से गान करने लगे। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि इनके अंदर, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि आपको एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा, आपके अंदर जो ये घमंड है, ये घमंड आपको आपको पतित बना देगा। तो फिर नारद मुनि ने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जब वो दासी के पुत्र के रूप में थे, छोटे से बालक थे, उस समय नारद मुनि ने 4 महीने तक उनके घर में जो साधु आए थे, शुद्ध भक्त आए थे, उनकी सेवा की थी। तो उस सेवा से उनको जो फायदा हुआ, आध्यात्मिक उन्नति हुई, वो नारद मुनि अभी डिस्क्राइब करते हैं, इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिद्ध वातावरण सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसे होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की यह स्थिति माया कहलाती है। इसलिए अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। इस तात्पर्य में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो कितने भी गिरे हुए स्तर पे हो, परंतु अगर वो भगवान की भक्ति में कनेक्ट होता है, जुड़ता आता है, तो वो उस स्तर से भी बहुत उच्च अवस्था तक आके भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जब तक व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसकी ये स्थिति माया कहलाती है। और जैसे ही वो अपनी सारी शक्तियों को इंद्रिय भोग में नहीं लगा के भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रम दूर हो जाता है। और भगवान की सेवा करना का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के दासों की सेवा करना भगवान की सेवा से भी बड़ा है। भगवान एक जगह पे पद्म पुराण या मत भक्ता पूजा अभ्यर्थिका शायद श्रीमद् भागवत में ही बताते हैं कि मेरे भक्तों की पूजा सेवा करना मेरी सेवा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे हुए प्रामाणिक गुरु को चुने और उन गुरु की सेवा करे, और जितना वो उस गुरु के लिए सरेंडर करेगा प्रामाणिक गुरु के लिए, उतना ही भगवान उसको रियलाइजेशन उसको अनुभूति प्रदान करेंगे। और भगवान की सेवा में इस प्रकार से मानव शक्ति का उपयोग मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ने का समान है। इसके बाद अगले श्लोक में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ते मय्य पेता खिल चापलिर्भके दान्ते द्विकीर्णके नुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना सुसु समाने मुनयोल्पभासे। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि नारद मुनि के अंदर कौन कौन से गुण थे और उन गुणों के कारण किस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त आए थे उन शुद्ध भक्तों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। कौन कौन से गुण थे? मय्य पेत चापल्य अर्भके, छोटे बच्चे के एक छोटे बालक के अंदर जिन जिन वस्तुओं के लिए रुचि होती है वो चीजों के लिए नारद मुनि के अंदर रुचि नहीं थी। उनके साथ वाले जो बालक थे वो खेलते थे, अलग अलग काम करते थे, पर नारद मुनि का उनके लिए उस चीज के लिए रुचि नहीं था। साथ साथ नारद मुनि का एक और क्वालिटी है दानते, उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था हमेशा। अद्वत क्रीड़ा नके, खेल कूद की आदतों में ज्यादा नहीं लगे रहते थे। अनुवर्तनी, अनुवर्तनी मतलब अनु मतलब पीछे और वर्तनी मतलब कार्य करना, आज्ञाकारी थे। और सुसु सुमाने, श्रद्धावान थे। तो ये गुण होने चाहिए अगर हम भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं या भक्त की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के गुण होने से भक्त की कृपा प्राप्त हो सकती है। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रिय जित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। तो हालांकि भक्त की कृपा जो है वो अहेतु की होती है, परंतु जब भक्त किसी किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण देखते हैं तो भक्त खुश होता है। उन गुणों को देख के वो उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करता है। तो इसलिए नारद मुनि के गुण बहुत महत्वपूर्ण है जानना। एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण, और खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए, चपल नॉटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, अल्पभाषी नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटीज अगर हैं तो लोग कृपा करते हैं, भगवान के भक्त कृपा कर सकते हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने और भी अच्छे अच्छे गुण लिखे हैं। ये तात्पर्य श्रीमद् भागवतम का एक बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। भगवत गीता में ध्यान से सुनिएगा इस तात्पर्य को। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्तिमय कर्म करना, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांति जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी काम उद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीवों को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है, और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर दिया था, और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व यह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहाँ उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भाव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियों को जीते बिना, अनुशासित हुए बिना और पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर कोई ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, या कोई आज्ञाकारी नहीं है, अनुशासित डिसिप्लिन नहीं है और आज्ञाकारी नहीं है, तब वो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को पालन नहीं कर सकता, और अगर आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को पालन नहीं करेगा तो भगवत धाम भी नहीं जा सकता। और इस तात्पर्य में यह भी बताया जा रहा है कि वास्तविक वैदिक सिस्टम जो कहलाता है, उस वैदिक सिस्टम में हर पग पे संस्कार पाए जाते हैं। संस्कार इन द सेंस जो व्यक्ति को कल्चर्ड बनाते हैं, व्यक्ति के शिष्टाचार को बढ़ाते हैं। इवन बचपन से माँ के गर्भ में बच्चे के आने के पहले भी गर्भाधान संस्कार होता था, उसके बाद अलग अलग संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, उपनयन संस्कार, अलग अलग गुरुकुल में जाते हैं, मुंडन संस्कार, अलग अलग संस्कार होते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कार वर्णाश्रम प्रणाली में होते थे। तो जो पहले के समय में वर्णाश्रम का पालन करते थे, उनको इंद्रिय भोग वाले जीवन, इंद्रिय भोग का जो इररिस्पॉन्सिबल लाइफ है, उसके बारे में पता नहीं रहता था, जानते ही नहीं थे। और अभी के लोगों को वर्णाश्रम प्रणाली या वैदिक जीवन अपने आप में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इसको इमेजिन नहीं कर पाते। तो उपाध्याय यहाँ पे लिख रहे हैं कि 3 क्वालिटी होनी चाहिए अगर हम गुरु के आदेशों को पालन करना चाहते हैं, तो 3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के पास होना चाहिए। पहली क्वालिटी होनी चाहिए डिसिप्लिन्ड, अनुशासन उसके पास होना चाहिए। अनुशासन मतलब रेगुलर जीवन और किसी व्यक्ति के लिए सरेंडर्ड होना, किसी की बात सुनना, उसको अनुशासन। तो पहला डिसिप्लिन, दूसरा ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तीसरा सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का नियंत्रण। अगर किसी के अंदर ये 3 गुण हैं, तभी वो गुरु के आदेशों को मान सकता है। अगर ये तीन गुण नहीं है तो गुरु के उपदेश का पालन करने में उस व्यक्ति को कठिनाई होगी, और गुरु के आदेशों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त तो भी नहीं कर सकता। तो इन तीन गुणों को देख के और नारद मुनि की क्वालिटीज को देख के जो भक्ति वेदांत थे, उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और उनको अपना जूठन प्रदान किया। वो अगले श्लोक में आ रहा है। उच्चिष्ठले पान अनुमोदितो द्विजय सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विसह एवं प्रबत्तस्य विशुद्ध चेतसस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। ये बता रहे हैं उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय कि एक बार उन्होंने ये जो द्विज ये जो भक्त थे उनकी अनुमति से उनका जूठन ग्रहण किया था, और जूठन ग्रहण करने से उनके पाप नारद मुनि के पाप तुरंत खत्म हो गए, तुरंत नष्ट हो गए। और इस प्रकार से पाप नष्ट होने से उनका और उनके सेवा में लगे रहने से नारद मुनि का हृदय शुद्ध हो गया और तब उनका स्वभाव इनको बहुत अच्छा लगने लगा। दैट मीन्स इस संसार में तीन वस्तुएं बहुत बहुत शक्तिशाली होती हैं। वैष्णव के पाद जल, वैष्णव के पैरों पैरों को धो के उसका जो जल होता है, वैष्णव का उच्चिष्ट जो भोजन करने के बाद जो उच्चिष्ट वस्तु है वो, और पाद धूल उनके चरणों की धूल, ये तीन चीजें बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर किसी को ये मिलता है तो वो भगवत भक्ति में बहुत एडवांस हो जाता है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि नारद मुनि ने उनकी अनुमति लेके उनके अप्रूवल के बाद उनका जूठन स्वीकार किया। बहुत अच्छा तात्पर्य है ये, उसकी उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनके जूठन उनकी अनुमति से मैं एक बार उनके जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के समान है, संक्रामक रोग तुल्य है किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसा जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि भक्तों की थाली में से छीन के लिया जा सकता है। कई बार जब हम ये पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं अभी तो प्रभु जी की थाली में से छीन के ले लेंगे। इसका मीनिंग है शुद्ध भक्त की अनुमति के बिना, मतलब उस भक्त के सामने उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो थाली जब हमें हमारे पास आए तो हम उसमें से ले सकते हैं, तो उस भक्त को पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी के सामने अगर हम उसके जूठन को स्वीकार कर लेते हैं तो भक्त को भी खराब लगता है, क्योंकि हर भक्त अपने आप को विनम्र समझता है और उसको लगता है कि मेरे जूठन का कोई कोई मतलब नहीं है। हर भक्त अपने आप को पतित समझता है, तो बिना अनुमति के ग्रहण करना मतलब जब वो थाली हमें दे दे उसके बाद वो चला जाए फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार का उदाहरण चैतन्य चरितमृत में भी आता है, चैतन्य लीला में आता है। एक कालिदास नाम से एक भक्त थे, वो भक्तों को भोजन कराते थे और जब वो भक्त उस समय तो क्या है इसमें केले के पत्ते में भोजन होता था, तो केले के पत्ते में फिर भक्त लोग उसको बाहर फेंक देते थे और फिर वो केला का पत्ता उठा के उनके भक्तों के जूठन को ग्रहण करते थे। तो उस प्रकार से करने में कोई समस्या नहीं है, उस भक्त को पता नहीं चलेगा तो उस भक्त को भी एम्बरास फील नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम यश गुण लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं और अंत में वह भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होती हैं और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। दैट मीन्स अगर किसी के ऊपर भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर अगर शुद्ध भक्ति की कृपा होती है तो उसको भक्ति करना अच्छा लगने लगता है और उस भक्ति के टेस्ट के आगे भौतिक वस्तुओं का टेस्ट उसको कम लगने लगता है। और शुद्ध भक्त की कृपा से भौतिक कार्यकलापों के प्रति व्यक्ति आकर्षित भी नहीं होता है और भक्ति के रास्ते से सारे अवरोध दूर हो जाते हैं और अवरोध दूर होने से ईश्वर के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है और उसमें रुचि प्राप्त होती है, उसके रियलाइजेशन प्राप्त होते हैं, भगवान की सेवा में फाइनली वो लग जाता है। तो नारद मुनि के साथ भी वही हुआ, उन भक्तों की संगति से नारद मुनि पूरी तरह से भक्ति में लग गए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण श्रणवं मनोहरा ताश्रद्धया मेनुपदं विश्रण्वतः प्रियस्वंग्यंग ममा भवद्रुचिः। हे व्यासदेव, उस संगति से तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तो इस प्रकार से जूठन उनको मिला और साथ साथ हमेशा वो उनसे कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे। जब वो लोग डिस्कस करते थे तब नारद मुनि भी उनसे कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे। तो कृष्ण के बारे में सुनते सुनते भगवान के विषय के सुनने के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी और रुचि के बाद आसक्ति भाव और प्रेम की अवस्था तक नारद मुनि पहुंचे। अगले श्लोक में आएगा वो। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ना केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम यश रूप लीलाओं पार्षदों साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सान्निध्य प्राप्त होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कला प्रधान कलियुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। इसमें जो श्लोक का रेफरेंस दिया गया है, ये श्लोक हम श्रीमद भागवतम में इसी स्कंद में दूसरे अध्याय में 17 नंबर श्लोक से 21 नंबर श्लोक तक बताया गया है। इसके अलावा भी दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में इस प्रकार से आता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, श्रणवताम श्रद्धया नित्यम, लगातार श्रद्धा के साथ नित्य भगवान के बारे में सुनता है और साथ साथ चेष्टा करता है अपनी तरफ से भक्ति में प्रोग्रेस करने की, तो बहुत जल्दी भगवान उसके हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं। और जब भगवान हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं तब वो व्यक्ति भगवान उसके हृदय में जब हृदय के कमल में जब स्थापित होते हैं तो सारे मल, जितने भी मल है शरीर मन के अंदर हृदय के अंदर, उस सब का भगवान विनाश कर देते हैं। और उस प्रकार से फिर व्यक्ति जब उसके मल का विनाश हो जाता है, पूरी तरह से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तब वो भगवान से इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि भगवान के अलावा और बाकी वस्तुओं में उसका आकर्षण चला जाता है। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, नारद मुनि को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। नहीं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में आता है, तस्मिन् तस्मिंस्तदा लब्ध रुचे महामते खलिता मध्य मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। जैसे ही भगवान का रियलाइजेशन उनको प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण के प्रति अटल हो गया। तो ये एक अवस्था आती है जब हम सुनते सुनते भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो फिर श्रवण में भी हमारा ध्यान अटल हो जाता है, फिर हम लगातार भगवान के बारे में सुन सकते हैं। और जब हम नहीं सुनते हैं उस समय हमें वो चीजें याद आती हैं। जैसे अगर हम बहुत अच्छे से श्रवण किया है तो हम अपना कोई रेगुलर काम करेंगे तब भी हमें श्रवण याद आता रहता है, तब भी हम उसके बारे में याद करते हैं। तो वो स्थिति आती है जब हम भगवान के प्रति आस्वादन प्राप्त कर लेते हैं। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवान के प्रति आकर्षण के कारण इनको ये भी पता चल गया कि वो आत्मा है और उनके ऊपर जो शरीर है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ड्रेस के समान है, और मैं और भगवान दोनों दिव्य हैं, मतलब आत्मा और भगवान दोनों दिव्य हैं। तो इतनी ऊंची अवस्था नारद मुनि ने प्राप्त की, छोटे से बच्चे 5 साल की उम्र में उन्होंने ये अवस्था प्राप्त की कि वो समझ गए कि ये शरीर जो है ये ड्रेस के समान है। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहां कहीं प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञान बस ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने मतलब मंदिर में झाड़ू लगाने, या नमस्कार नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। तो हमारे शरीर को भगवान की फिजिकल सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर की सफाई, भगवान को नमस्कार करना, अलग अलग तरीके से भगवान का भोग बनाना, भगवान के लिए जल लेके आना, इसमें हमें अपने बॉडी फिजिकल शरीर को लगाना चाहिए, और अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को भगवान की पूजा करने में लगाना चाहिए। मतलब पूजा मतलब स्मरण करने में और भगवान को याद करने में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं, इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि नारद मुनि का स्टोरी इस चैप्टर में और इसके आगे के चैप्टर में भी चलता है। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज हमने बेसिकली ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से भगवान के गुणगान करना सभी वेदों का सार है, सारी वस्तुओं का अंतिम प्रयोजन भगवान के गुणों का गुणगान करना है, और उसको प्रूफ करने के लिए नारद मुनि ने अपनी स्टोरी बताई। नारद मुनि के गुणों को भी हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति ज्यादा नॉटी नहीं होना चाहिए, कम बोलने वाला, और भौतिक वस्तुओं में अरुचि होनी चाहिए, साथ साथ अनुशासन होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, और इंद्रियों को नियंत्रित होना चाहिए, तब वो वैष्णव की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और वैष्णव की कृपा प्राप्त करने से, वैष्णव का जूठन खाने से नारद मुनि के अंदर किस प्रकार से उनकी रुचि बढ़ती गई, तो इसके आगे हम 28 नंबर श्लोक से अगले हफ्ते इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि वैष्णव 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव तो कंप्लीट हो चुका है। तो अगले हफ्ते से हम फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन ये क्लास करेंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर से ब्रजमंडल परिक्रमा चालू होने वाला है, तो उसके पहले मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना होगा। तो इस प्रकार से हम अगले हफ्ते 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, तीनों दिन इसको डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये वाला अध्याय और अगला अध्याय आसानी से कंप्लीट कर सकें। यस पुरुषोत्तम राम प्रभु, आपने हाथ उठाया था।
बहुत
यस
अच्छा प्रभु जी आपने समझाया। और मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि नारद मुनि जब शुद्ध भक्तों
एक्चुअली मैंने कुछ समझाया नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ समझाया, मैंने केवल पढ़ा है उसको।
वो प्रभु जी पढ़ने में भी हम समझ नहीं पाते हैं, आप अच्छे से समझ के आपने समझाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, यहाँ पे जैसे हमने प्रसंग में देखा प्रभु जी कि नारद मुनि जब शुद्ध भक्तों के संग में आए, उनकी सेवा करी, तो
हाँ
वो मतलब प्रभु जी उनका मतलब रुचि उत्पन्न हुई मतलब भगवान के प्रति। और प्रभु जी जैसे हम अभी हैं, तो हम दो स्टेटमेंट सुनते हैं कि या तो हमें हमेशा शुद्ध भक्तों के या जहाँ पे भगवान के भक्त हैं उनके मतलब एसोसिएशन में रहना चाहिए, और कभी कभी ये भी हम सुनते हैं प्रभु जी कि आप जहाँ पे भी हैं वहां पे रहिए और मन से जप करिए और आप अपना काम करते रहिए। प्रभु जी जब हम अपना काम करते हैं तो हम मटेरियल एसोसिएशन में आते हैं, तो हम इतनी रुचि डेवलप मतलब जब तक सुनते हैं क्लास तब तक तो अच्छा है, पर जैसे ही मटेरियल उसमें टच में आते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है। तो प्रभु जी
हाँ
मतलब इस चीज को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ सके और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके।
बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली हम जिस प्रकार के एसोसिएशन में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, मेन मेन एक वो डिफेक्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो कि भौतिकतावादी लोगों ने जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम इस प्रकार से है कि ये सिस्टम हमें भगवान को भुलाता है। क्योंकि जो हम सिटी लाइफ देखते हैं ये आर्टिफिशियल लाइफ है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि भगवान की आवश्यकता भी है कि नहीं, क्योंकि उनको सब्जी मॉल में मिल जाती है, दूध भी उनको अमूल से मिलता है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड रहना भूल जाते हैं। मुझे डाउट होता है कि अगले जनरेशन में जो बच्चे आएंगे उनको पता भी होगा कि दूध गाय से मिलता है कि नहीं, उनसे अगर पूछेंगे दूध कहाँ से आता है तो बोलेंगे मॉल से आता है। तो
सही बात
आर्टिफिशियल
है,
सिविलाइजेशन हमें इस प्रकार से सिखाती है कि भगवान से दूर कैसे जाना है, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि हम भक्ति के रास्ते में हैं और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे सिविलाइजेशन के बीच में फंसे हुए हैं, तो एक स्ट्रगल के जैसे ही है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक बैटरी बहुत स्ट्रांग चार्ज रखेंगे तो चलता रहेगा, भक्तों का संग लगातार हमें लेना होगा। अगर हम, हो सकता है भक्तों के साथ में हमेशा नहीं रह पाए, परंतु समय निकाल के उनका संग हमें लेना होगा और उनकी सेवा करना होगा। संग लेना मतलब सेवा करना, इसलिए भक्तों की सेवा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहना चाहिए। उस सेवा करने से हमारा हृदय संतुष्ट होता है। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन तो है कि अगर हम ऐसी लाइफ स्टाइल ढूंढ लें कि हमें इतना ज्यादा भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना पड़े, वो एक बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि अगर हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आध्यात्मिक एनर्जी को इतना ज्यादा चार्ज रखें, एटलीस्ट सुबह भगवान का नाम लें और रेगुलरली मंदिर में जाएं या कुछ सेवा करें, या फिर रेगुलरली भक्तों के साथ में रहें, वो उसको ऑप्शनल नहीं रखें कि जब समय मिलेगा तब भक्तों के पास जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भक्तों का संग उनकी सेवा हमेशा हमें रखनी होगी। दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल के इस प्रकार से करें कि हमें भक्तों का संग मिल सके और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा सिंपल हो कि हम भगवान को ज्यादा याद कर सकें, नेचर के पास में रह सकें, या फिर हम अपनी आध्यात्मिक बैटरी को बहुत स्ट्रांगली चार्ज कर सकें। जैसे एक उदाहरण आता है, आपने देखा होगा कौन सा चैनल एक आता है जिसमें जंगलों की बहुत सारी वस्तुएं बताती हैं, डिस्कवरी चैनल या कोई एक चैनल आता है। उस चैनल में एक बार मैंने एक वीडियो देखा था कि नेवला सांप को किस प्रकार से मारता है। जंगल में सांप और नेवला की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें क्या था, सांप को नेवला सांप को पकड़ता था और उसको खींच के, नेवला को पता था कि एक ऐसी झाड़ है जिसमें जिसके पत्ते को खाने से सांप के जहर का असर नहीं होता है, वो उन लोगों को पता रहता है। तो नेवला ने सांप को पकड़ा और सांप को खींच के वो उस झाड़ के पास लाने का प्रयास करता था, और सांप उसको काटता था। जैसे नेवला को लगता था कि सांप ने काटा है, उसका जहर का असर होने लगा है, तो भाग के उस झाड़ के पास जाता था और पत्ती खा के आता था वापस, फिर पत्ती खा के आता था, फिर सांप को खींचना चालू करता था। तो ऐसा करते करते नेवला ने सांप को खींच खींच के उस झाड़ के पास आया, और एक बार जब झाड़ के एकदम पास में नेवला आया तो उस सांप को एकदम पास में ले जाके उस पत्ती को ही मुंह में लगा चबाते हुए उसने सांप को फाड़ के अलग कर दिया। तो उसका मैं देखा था कि उसको कैसे समझ सकते हैं। दैट मीन्स जो सांप है वो भौतिक संसार से स्ट्रगल है, तो भौतिक संसार से स्ट्रगल करते करते जब हमें लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाग के भक्तों के संग में जाना चाहिए। और वो पत्ती खाना मतलब भक्तों की सेवा करना, आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करना, फिर से आके फाइट करना। पर ये फाइट करने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि हमेशा फाइट कर रहे हैं, उस सांप को खींचते खींचते हमें इस प्रकार से लाना है। तो जीवन का प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम एक समय पे ऐसे लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करें जब हम आध्यात्मिक जीवन के लिए अधिक समय दे सके। लाइफ टाइम अगर हम सोचेंगे कि हम ओल्ड एज तक इतना ज्यादा बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, तो कठिन होगा। अपनी आवश्यकता को समझ के हम सफिशियंटली टाइम उस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है प्रभु।
जी प्रभु जी, थैंक यू।
ओके, दूसरा एक और प्रश्न है, कुंजवासिनी माता जी, उनका हैंड रेज है। ओके यस।
वो ऐसा कुछ वर्ड आया था जिसमें वो मीनिंग समझ आया, वो
जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा पास में आके बोलेंगे, बहुत धीमी आवाज आ रही है।
हरे कृष्णा प्रभु।
हाँ यस प्रभु।
तो वो छंगना डिवोटीज करके एक वर्ड आया था बीच में, वो जब वो प्रसादम का जो आया था उसमें, तो वो कैसे
हाँ।
डिवोटीज होते, वो नहीं मीनिंग पता मुझे
छंगना
डिवोटी।
डिवोटी का मतलब जो बाहर से डिवोटी जैसे लगते हैं परंतु अंदर से वो दिखावा करते हैं। तो उसमें लिखा है कि ऐसे लोगों का रेमनेंट्स नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट मेरे जैसे डिवोटी जो है वो छंगना डिवोटी
नहीं,
कहलाते
नहीं
हैं।
ब्रो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं
बाहर से
ब्रो।
देखने में डिवोटी ऐसे लगते हैं, तो ऐसे
नहीं, नहीं।
ऐसे लोगों के लिए उसमें लिखा हुआ है। छद्म मतलब दिखावा वाले लोग, जो कि भक्त का दिखावा करते हैं परंतु उनके अंदर उतना भक्ति नहीं होता है। और ऐसे
तो
लोगों के लिए सावधान रहने का लिखा था, क्योंकि आप उसका अगर रेमनेंट्स लेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है उस प्रकार से। ओके ठीक
ओके भाई,
है।
अरे कृष्ण,
तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम मिलते हैं, इसके आगे डिस्कस करेंगे। 28 नंबर श्लोक से, 28 से स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। टाइगर प्रेमानंदे।